जयधवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 9।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम स्वात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाणं जेते केवलदंशन नाणुवजोगे जुगवदुवजुत्ता ते केवलिनोपणमिय वोच्छं उवजोगमनियोगम्।
आचार्य श्री वीरसेन रचित ये जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यतिवशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक जो उपयोग नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 105 पर आ गए हैं। यहाँ हम जो कषायों का काल देख रहे हैं, तो वर्तमान में किसी विशिष्ट कषाय रूप से उपयुक्त जो जीव है उसका स्वस्थान अपेक्षा और परस्थान की अपेक्षा अतीत काल में कौन कौन सा काल था, इसकी बात हमने विस्तार से देखी है। और ये जो 12 पद हमने देखे, जैसे जो वर्तमान में मान से उपयुक्त है तो उनके स्वस्थान की अपेक्षा 3 पद, क्रोध के माया के और लोक के 3 के पद। तो ये जो पद है उसका अल्प बहुत्व बताने के लिए यहाँ, यानी यहाँ तो चारों कषायों के स्वस्थान को अल्प बहुत्व में बता रहे हैं। ये बात हमने 102 पृष्ठ से शुरू की थी। पहले नंबर पर देखा था कि लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का लोभ काल सबसे थोड़ा। लोभ कषाय में उपयुक्त जीव मैक्सिमम है, परंतु उनका जो अतीत काल में लोभ काल जो है वो सबसे कम है। उसके बाद हमने देखा था माया कषाय में उपयुक्त हुए जीव का माया काल उससे अनंत गुणा है। 3 नंबर पर देखा था कि क्रोध कषाय में उपयुक्त जीवों का क्रोध काल उससे अनंत गुणा है। उसके बाद मान कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का मान काल अनंत गुणा है। यानी यहाँ जीवों की संख्या क्रम से कम है, परंतु उसमें आने का काल अधिक बार होगा और लंबे काल तक चलेगा। 5 नंबर पर देखा था उसमें उससे लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का नो लोभ काल अनंत गुणा है। और उसके बाद देखा था माया कषाय में उपयुक्त जीवों का नो माया काल अनंत गुणा है। उसकी संदृष्टि भी हमने देख ली थी। उसके बाद 7 नंबर पर देखा था कि क्रोध कषाय में उपयुक्त जीवों का नो क्रोध काल उससे अनंत गुणा है। अब यहाँ हम 105 पृष्ठ पर आ गए, यहाँ हम सूत्र पढ़ेंगे। मानो वो जुत्तानम नो मान कालो अनंत गुणो, उससे मान कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का नो मान काल अनंत गुणा है। इसको 8 नंबर डाले। नो मान काल उसकी संदृष्टि है 2916। कारण का कथन पहले कराए है, उसे ही यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसका विशेषार्थ बताते हैं। लोभ माया क्रोध और मान काल 54 हमने देखा था ना, उसकी संदृष्टि देखी थी हमने पृष्ठ संख्या 102 पर। एक तो उनके जीव राशि का प्रमाण लिया था और फिर उनके काल का प्रमाण देखा था। काल में हमने देखा था कि लोभ का 2 है, यहाँ देखो ना, यहाँ 102 पृष्ठ पर जीवों का अतीत का, हाँ यानी अतीत काल में ये जो लोभ का जो है हमने देखा था दो लोभोपयुक्त दो मिला क्या? देखो मानव उपयोग पहले लिया हमने ज्यादा, जीवों का प्रमाण मान में सबसे अल्प था और क्रोध माया और लोभ में अधिक अधिक होते गया। अब यहाँ मानोपयुक्त काल में 36 लिया था, उसके बाद क्रोधोपयुक्त काल 12, मायोपयुक्त काल 4 और लोभोपयुक्त काल 2। तो ये तीनों ये सब मिलकर 2 और 4 6, 6 और 12 18, 18 और 36 54। तो ये यहाँ 54 बताया। 9 लोभ काल 108, ये हमने देखा था, इसमें यहाँ लिखा भी है 9 लोभ काल 108। 9 माया काल 324। 9 क्रोध काल 972। यहाँ 9 मान की बात चल रही है, सभी का योग 1458, उसको 2 गुना किया, इन्हें अनंत गुना किया तो 2916 9 मान काल आ गया। अभी आगे बढ़ेंगे। मानो वो जुत्तानम मिस्से कालो अनंत गुना, उससे मान में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल अनंत गुना है। मान कषाय संबंधी मिश्र काल 8748, क्योंकि मान कषाय के सिवाय शेष कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के अवस्थान काल की 9 मान काल संज्ञा है, इसलिए 3 कालों के योग से 4 कालों का योग बहुत होता है। अतः पूर्व के काल से मिश्र काल अनंत गुणा है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यानी पहले 2916 और यहाँ 8748 हो गया। दूसरी बात यह कि मान कषाय में उपयुक्त हुई वर्तमान जीव राशि में से यद्यपि एक जीव निकलकर अन्य कषाय रूप परिणाम जाता है तो भी मान कषाय का मिश्र काल कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि दो जीव अन्य कषाय रूप परिणाम जाते हैं तो भी मान कषाय का मिश्र काल होता है। इस विधि से संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार से मान कषाय का मिश्र काल प्राप्त होता है। जो जितनी जीव अनंत जीव राशि वर्तमान में मान कषाय में उपयुक्त है वो अतीत काल में उसमें से एक भी जीव दो भी जीव तीन भी जीव करते करते संख्यात असंख्यात अनंत भी जीव एक यहाँ रखो बाकी सब तो कहते वो सारे अलग, हाँ मिश्र कहेंगे। यानी उसमें से एक मान कषाय रूप रखना बाकी सब अन्य अन्य तो उसको मिश्र काल कहेंगे। यतः इस प्रकार अनंत प्रकार से प्रकृत काल की प्राप्ति संभव है, अतः यह काल अनंत गुणा है यह सिद्ध हुआ। उसका विशेषार्थ लोभ माया क्रोध मान काल 54, ये जो ऊपर हमने देखे थे ना वही 9 लोभ काल 108, 9 माया काल 324, 9 क्रोध काल 972, 9 मान काल 2916, इन सब कालों का योग 4374, उसको अनंत गुना किया तो 8700 यानी 2 गुना किया 8748 मान मिश्र काल हुआ। अब उससे आगे देखते हैं, कोहो व जुत्तानम मिश्रे कालो विशेष आहिये, अब अनंत गुणा नहीं कहा विशेष अधिक, उससे क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण क्या है? मान और नुमानो मान के कालों में से क्रोध और नो क्रोध के कालों को कम कर देने पर जो शेष रहे उतना विशेष का प्रमाण है। शंकाकार पूछता है वह कैसे, तो उसका समाधान है अतीत काल संबंधी सब कालों के योग में से मान और नोमान काल के कम कर देने पर जो शेष रहे वह मान कषाय का मिश्र काल होता है और वह अंक संदृष्टि की अपेक्षा 8748 की तरह है। अभी हम ये हमने देखा ना, क्योंकि अतीत काल संबंधी सब कालों का योग अंक संदृष्टि की अपेक्षा 11,700 इतना ग्रहण किया गया है, तभी अतीत काल के सभी कालों का योग लिया है। इसी में से मान और नोमान काल के अनंत गुणे हीन क्रोध और नो क्रोध काल के घटा देने पर जो काल शेष रहता है वह क्रोध मिश्र काल है, जो कि अंक संदृष्टि की अपेक्षा इतना है, 10,716। और यह मान के मिश्र काल से मान नोमान काल के अनंत में भाग मात्र अधिक है, इसमें संदेह नहीं है। मान का मिश्र काल हमने 8,748 देखा था और ये 10,716 हो गया, तो कहते वो अनंत वा भाग मात्र अधिक है। संदृष्टि की अपेक्षा विशेष का प्रमाण यह है, 1,968। हाँ, नहीं प्लस नहीं करना, ये 8,748 से 10,716 कितना ज्यादा है?
1,963।
नहीं नहीं, ये योग है, उसमें से मान और नोमान को घटा दिया था। देखो देखो ये टोटल कितना है, 11,700। फिर से प्रमाण आया, वो क्या है तो मान 1900 नहीं 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 2,952 में से 984 माइनस किए थे उन्होंने, वही बात होगी ना, वही इसमें डाल दिया तो 10,716 हो गया। नहीं समझे, ये जरा घोटाला हो रहा है। देखो फिर
यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट है,
देखो डिफिकल्ट है, हम फिर से दोबारा देखिए 102 पेज निकालो, क्योंकि जल्दी करने से कुछ फायदा
लोग कसा में रहने का पहले से देखेंगे।
नहीं नहीं देख, पहले भी पहले संदृष्टि दोबारा देखो,
जीवों की संख्या देख लेते हैं पहले।
देखो वहाँ तो दो संदृष्टियाँ बताइए, एक तो
जीव की अपेक्षा,
जीवों की संख्या, कषाय में उपयुक्त जीवों की संख्या, और दूसरी बात है उनका काल। तो वर्तमान में कोई अलग है और भूतकाल में कुछ अलग है, उन सब की बात देखिए तो हम पढ़ेंगे। देखो ये 223 नंबर का पॉइंट है, उसमें तीसरी लाइन संदृष्टि जहाँ से शुरुआत होती है, वर्तमान काल में मान में उपयुक्त हुई जीव राशि का प्रमाण 16 है, सबसे कम। वर्तमान काल में क्रोध में उपयुक्त हुई जीव राशि का प्रमाण 20 है। वर्तमान काल में माया में उपयुक्त हुई जीव राशि का प्रमाण 25 है और वर्तमान काल में लोभ में उपयुक्त हुई जीव राशि का प्रमाण 21 है। अब उन्हीं जीवों का जो मान से उपयुक्त है, क्रोध में उपयुक्त है, माया में उपयुक्त है, लोभ में उपयुक्त है, उन्हीं जीवों का अतीत काल में मानोपयुक्त काल 36 है। उन्हीं जीवों का अतीत काल में क्रोधोपयुक्त काल 12 है। उन्हीं जीवों का अतीत काल में मायोपयुक्त काल 4 है और उन्हीं जीवों का अतीत काल में लोभोपयुक्त काल 2 है। ये काल की अपेक्षा संदृष्टि बताए, पहले तो जीवों की संख्या बताई थी, यहाँ काल बता रहे हैं। यानी लोभोपयुक्त काल सबसे कम है, 2 है, उल्टे क्रम से मायोपयुक्त 4 है, क्रोधोपयुक्त 12 है और मानोपयुक्त 36 है। अब कहते उन्हीं जीवों का अतीत काल में नोमान काल यह है, काल की बात है तो 2,916। उन्हीं जीवों का अतीत काल में नो क्रोध काल यह है 972। उन्हीं जीवों का अतीत काल में नो माया काल है 324 और उन्हीं जीवों का अतीत काल में नो लोभ काल है 108। यानी लोभ की तरफ से देखेंगे तो 108 माया का यानी नो माया का 324, नो क्रोध का 972 और नो मान का 2,916। उन्हीं जीवों का अतीत काल में मान मिश्र काल है 8,748। उन्हीं जीवों का अतीत काल में क्रोध मिश्र काल अभी ये बढ़ता हुआ है 10,716। उन्हीं जीवों का अतीत काल में माया मिश्र काल 11,372 और उन्हीं जीवों का अतीत काल में लोह मिश्र काल 11,590। इस प्रकार इस संदृष्टि द्वारा संस्कार प्राप्त शिष्यों के निमित्त अल्प भूतों का विचार करेंगे। तो अभी ये जो हमने संदृष्टि देखी, फिर से देखते, पहले नंबर पर हमने लोभ कषाय में उपयुक्त जीवों का लोभ काल सबसे थोड़ा है कहा था, उसकी संदृष्टि दो थी। उससे माया कषाय में उपयुक्त जीवों का माया काल अनंत गुना है, अनंत के लिए यहाँ दो से गुना किया तो दो गुना दो चार हो गए। उससे क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का क्रोध काल अनंत गुना है, तो वहाँ क्या किया, लोभ और माया काल दोनों को जोड़ा और उसको दो गुना किया तो वो हो गया 12। उसके बाद उससे मान कषाय में उपयुक्त जीवों का मान काल अनंत गुना है
36,
तो वो तो
36
वहां दिया था, वो कैसे निकाला, लोभ और माया का काल 6 है, लोभ माया काल, क्रोध काल 12
18 हो गए,
दोनों का योग 18, उसको दो गुना किया तो 36। अब उससे लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का नो लोभ काल अनंत गुना है, यानी वो वर्तमान समय में लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीव राशि है, उसके अतीत काल में लोभ को छोड़कर अन्य में रहने का काल, तो वो बहुत है, तो कैसे निकाला, तो लोभ का माया का क्रोध का काल सब मिलकर 18, 2+4+12। माया मान का काल 36, सबका योग 54, उसको दो गुना किया तो 108, नो लोभ काल हो गया। उससे माया कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का नो माया काल अनंत गुना है, वो 324। वो 324 कैसे लाया,
तीन गुना किया,
नो लोभ है, अभी 54 और 108
नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, तो उसमें
क्या हुआ,
नहीं
162 हो गया,
नहीं नहीं मैंने 102 पे ये सब माल अलग लिख के रखा है।
क्या कह रहे, कुछ पूछा, देखो लोभ का 2, माया का 4, क्रोध का 12 और लोभ का 36, सॉरी मान का 36, सब मिलकर 54 हुए। पहले हमने नौ लोभ का अभी निकाला था ना, 108, सबकी टोटल 162, अब उसको दो गुना कर, अभी तक जो हम देख के आए उसको फिर दो गुना कर, ये नौ माया काल हुआ 324। अब माया कषाय में उपयुक्त, देखो पहले भी, पहले हेडिंग देखो, पहले मात्र लोभ कषाय में उपयुक्त जीव लिए, फिर माया कषाय में लिए उपयुक्त जीवों का माया काल लिया, फिर मान कषाय में उपयुक्त जीवों का मान काल लिया, नहीं एक रह गया, लोभ में उपयुक्त जीवों का लोभ काल, माया में उपयुक्तों का माया काल, क्रोध में उपयुक्त का क्रोध काल और मान में उपयुक्त जीवों का मान काल, ये क्रम से देख के है ना। अब लोभ कषाय में उपयुक्त जीवों का नो लोभ काल, पांचवें पॉइंट पर देखा, फिर कहते हैं माया कषाय में उपयुक्त जीवों का नो माया काल, छठे पॉइंट पर, फिर क्रोध कषाय में उपयुक्त जीवों का नो क्रोध काल, ये नो माया काल तो हमने देखा था, अब वहां तक जो हमने देखा है अभी तक कौन कौन से देखे हमने, 54, 108, 324, सबकी टोटल 486, उसको दो गुना किया तो 972 आ गया, ये क्रोध कषाय में उपयुक्त का नो क्रोध काल हुआ। अब उसके बाद मान कषाय में उपयुक्त जीवों का नो मान काल अनंत गुना देखा, तो पहले क्रोध मान माया लोक का काल है 54, फिर नो लोक का 108, नो माया का 324, नो क्रोध का 972, सबका योग 1458, उसको दो गुना किया 2916 नो मान काल होगा। अब उसके कहते ये तो आठ हो गए ना, पहले चार अपने अपने कषाय में उपयुक्त जीव उसका अपना अपना काल लेखा, लोक का लोक में उपयुक्त का लोक काल, फिर माया में उपयुक्त का माया काल, क्रोध में उपयुक्त का क्रोध काल और मान में उपयुक्त का मान काल, ये चार हो गए। फिर अपने अपने कषाय के साथ नौ शब्द लगाया, लोभ का लोभ में उपयुक्त का नौ लोभ काल, फिर माया में उपयुक्त का नौ माया काल, क्रोध में उपयुक्त का नौ क्रोध काल और मान में उपयुक्त का नौ मान काल, ये आठ हो गए। अब नौ से अब मान से शुरू करना, मान में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल। तो अभी तक जो हमने देखा ना, क्रोध मान माया लोक के मान 54, आगे आगे अनंत गुना करते आए ना, इसलिए वो पहले वाले सब लेना, नौ लोभ वाला 108, नौ माया का 324, नौ क्रोध का 972, नौ मान का 2916, सबका युग 4374, उसको दो गुना यानी अनंत गुना किया 8748, मान मिश्र काल, मान में उपयुक्त जीवों का मान मिश्र काल। उसके बाद क्रोध में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल, जिसको हम क्रोध मिश्र काल कहेंगे, मिश्र काल कहेंगे, विशेष अधिक है। तो विशेष का प्रमाण क्या है ये पूछा गया था, तो कहते हैं मान और नोमान कालों में से क्रोध और नोक्रोध कालों को कम कर देने पर, अभी निकालो संदेश, मान और नोमान काल
36 और 2916,
हाँ निकाल, मान काल 36 है
तो नोमान
काल, नोमान काल निकालो कितना है
2916
मिला मंजू, 102 पृष्ठ पर निकालो, नीचे से छठी लाइन में जीवों का अतीत काल में नोमान काल 2916 और यहाँ मान काल 36, दोनों की टोटल कितनी होती है अभी यहाँ करके दिखाई थी ना उन्होंने, हाँ 2912, ये विशेष का प्रमाण क्या है ये पूछा गया था। तो यहाँ जो बताते हैं
दोनों का योग 2952 होता है ना,
नहीं 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 देखो,
हाँ मान काल और नोमान काल दोनों का
2952 है,
2952
36 और 16 52 हुए, 106 के विशेषार्थ में लिखा है, मान काल 36 नोमान काल 2916 दोनों का योग 2952। यहाँ क्या कहा था, हम आए थे 10वें पॉइंट पर और वो 90 से कितना अधिक है पूछा गया था, 90 में मान मिश्र काल लिया था हमने 8748, उससे क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल कितना है पूछा गया था, तो उसके लिए क्या बताया था कि मान और नो काल में नो मान काल में से यानी 2952 में से क्रोध और नो क्रोध के कालों को कम कर देने पर। अभी मंजू बहन बताएंगे क्रोध और नो क्रोध काल कितना है, क्रोध काल 12 है, नो क्रोध 912, यहाँ पर भी दिया है पीछे भी दिया है,
नहीं नहीं
दोनों का योग कितना हुआ
984।
अब ये मान नोमान की जो टोटल थी 2952 उसमें से क्रोध नो क्रोध की टोटल 984 माइनस करेंगे तो 1968 आ जाए, 1968। ये विशेष का प्रमाण है, इसका अर्थ क्या है, अभी हमने जो 105 पृष्ठ पर मान में उपयुक्त जीवों का मिश्र काल जो देखा था 90 पॉइंट पर 8748, उसमें ये विशेष का प्रमाण मिला दो, कितना अभी हमने देखा 1968, वो मिलाने पर क्या मिलेगा, क्रोध मिश्र काल मिलेगा तो 10716। दूसरी पद्धति से बता रहे हैं, मान नोमान काल है 2952, 2952 को तीन यानी किसी अनंत से भाग दिया, 984 जो आए वो मान नोमान काल से अनंत गुणाहीन क्रोध नो क्रोध का काल, और 11,700 अतीत संबंधी सब कालों का युग, सभी कालों का युग इतना हो गया है। तो 11,700 में से 984 अगर माइनस करेंगे तो भी क्रोध मिश्र काल मिल गया। ये अलग पद्धति दी गया। अब ये हमने 9 और 10 देख लिया। अब 11 नंबर पर आते हैं। मायो जुत्तानम मिस्से कालो विशेषाय, उससे माया कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल विशेष अधिक है। पहला नंबर मान का मिश्र काल लिया 9 नंबर पर, फिर क्रोध में उपयुक्त हुए जीवों का मिश्र काल लिया विशेष अधिक। अब कहते हैं माया कषाय में उपयुक्त जीवों का मिश्र काल और विशेष अधिक है। तो माया कषाय का मिश्र काल है 11,372। ये विशेष का प्रमाण कितना है? तो कहते क्रोध और नो क्रोध के कालों में से, अभी हमने ऊपर देखा था ना क्रोध नो क्रोध काल कितना है, दोनों का योग 984 देखा था अभी अभी। माया और नो माया के कालों को कम करने पर ये माया नो माया काल कितना है?
328।
कम करने पर जो शेष रहे उतना है,
328
तो माइनस करने पर 656 हो जाता। संदृष्टि की अपेक्षा उसका प्रमाण 656 है। शेष कथन सुगम है क्योंकि इससे पूर्व के सूत्र में कथन के समय ही उसका व्याख्यान कराया है। विशेषार्थ माया नो माया काल 328, क्रोध नो क्रोध काल 984। तो 984 में से 328 माइनस किया तो 656 आ गए, वो विशेष का प्रमाण। क्रोध मिश्र काल 10,716 में वो विशेष 656 मिलाएंगे तो 11,372 माया का मिश्र काल मिलता है। लोभो व जुत्तानम मिश्र कालो विशेष आयो, उससे लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का ये 12 नंबर मिश्र काल विशेष अधिक है। तो लोभ मिश्र काल 11,590 होते हैं, ये 9 बराबर का। शंका, विशेष का प्रमाण कितना है? माया करो, माय हुआ है। अभी वही फॉर्मूला लगाना, माया नो माया संबंधी कालों में से लोभ नो लोभ संबंधी कालों को कम कर देने पर जो शेष रहे उतना है। यहाँ पर संदृष्टि की अपेक्षा उस शेष का प्रमाण इतना 218। ये कैसे निकला? माया नो माया का काल 328 है, लोभ नो लोभ का काल 110 है, 328 में से 110 गए तो 218 रह गए। ये विशेष का प्रमाण है। यानी माया मिश्र काल अभी हमने ऊपर कितना देखा था 11,372, अब उसमें ये 218 मिला दो विशेष का प्रमाण, तो 11,590 लोभ मिश्र काल आ गया। सर्वत्र अतीत काल में से अपने अपने काल तथा नो काल को कम कर देने पर जो शेष रहे उतना उतना अपना मिश्र काल होता है, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। क्या कहते हैं? अतीत काल में से अपने अपने काल, जैसे लोभ के लिए अपना लोभ काल तथा लोभ के लिए नो लोभ काल को कम कर देने पर जो शेष रहता है तो उतना अपना अपना मिश्र काल होता है, ऐसे यहाँ करना चाहिए। सबके अतीत काल के प्रमाण की संदृष्टि 11,700, यह अतीत काल के पूरे की संदृष्टि। उसमें नो मान काल 2,952, क्रोध नो क्रोध काल 984, माया नो माया काल 328 और लोभ नो लोभ काल 110। तो देखो मान नो मान का काल कितना बताया? 2,952। तो टोटल जो 11,700 में से 2,952 माइनस करेंगे तो 8,748 मान मिश्र काल होगा, क्योंकि हमने अतीत काल के पूरे टोटल में से मान नो मान काल को माइनस कर दिया। अब पूरे अतीत काल जो 11,700 उसमें से क्रोध नो क्रोध काल की टोटल जो 984 उसको कम करेंगे तो 10,716 आते हैं। वो क्या होगा? क्रोध मिश्र काल। उसी अतीत काल के पूरे टोटल 11,700 में से माया नो माया काल का टोटल जो है 328 कम करेंगे तो 11,372 आते हैं, ये माया मिश्र काल है। उसी टोटल 11,700 में से लोभ और नोलोभ काल की टोटल जो 110, क्योंकि लोभ का 2 था और नोलोभ का 108 था तो दोनों का मिलकर 110 हुआ, उसको अगर हम घटाते हैं तो 11,590 लोभ मिश्र काल आ गया। इस प्रकार इन 12 स्वस्थान पदों के अल्पभूतव का कथन किया, यानी अपने अपने कषाय में उपयुक्त जीवों का अपना अपना काल उसमें बताया। हर एक कषाय पर 3-3 काल घटित किए, तो उसमें 12 अल्पभूतव में पहला हमने देखा था लोभ से उपयुक्त वाले लोभ काल 2, और फिर माया से उपयुक्त का माया काल 4, क्रोध से उपयुक्त क्रोध काल 12, मान से उपयुक्त का मान काल
36।
उसके बाद किसका नंबर आया?
नो काल। नो काल,
नो काल, नो काल,
नो लोभ
काल। नो काल में क्या लिया?
पहले नो लोभ काल लिया,
पहले नो लोभ लिया, नो लोभ में कितना लिया था?
108। पीछे नो माया,
नो माया कितना? जरा लोगों को सोचने दो, बहुत फास्ट मत चलो, पढ़ो मत,
पढ़ना नहीं, मैंने लिख के रखा है पूरा अलग से,
मैं दूसरों को सोचने को अवसर दो, नहीं तो इतना फास्ट हो जाएगा। फिर ये रिवीजन इसीलिए कर रहे हैं हम कि लोगों को फिर ख्याल में आ जाए। तो पहले 4 तो ख्याल में आ गए हमने, लोभ का लोभ माया क्रोध और मान अपना अपना काल लिया उसका, तो हमने 2, 4, 12 और 18 देखा। उसके बाद 36 देखा, लोभ कषाय में उपयुक्त तो हुए उनका लोभ नो लोभ काल लिया। यानी अभी ये समझना कि जो हम कह रहे हैं उस कषाय में उपयुक्त तो की बात है, यानी लोभ में उपयुक्त तो का नो लोभ काल 5वें नंबर का, फिर माया में उपयुक्त तो का नो माया काल, फिर क्रोध में उपयुक्त का नो क्रोध काल और मान में उपयुक्त का नो मान काल। हम डायरेक्ट उसकी फिगर देखेंगे, देखो 104 पृष्ठ पर लोभ का नो लोभ कितना देखा? 108। उसमें माया का नो माया काल टोटल 324, क्रोध का नो क्रोध काल 972 और मान का नो मान काल 2916। ये हो गए ना 8। अभी 9, 10, 11, 12 अपने अपने में मिश्र काल लेना, तो मान में उपयुक्त का मिश्र, अभी मान को पहले लेना, मान में उपयुक्त का मान मिश्र काल लेना, वो हमने कितना देखा था? 8,748। फिर क्रोध में उपयुक्त का उसका अपना मिश्र काल 10,716, माया में उपयुक्त का उसका अपना मिश्र काल 11,372 और लोभ में उपयुक्त जीवों का मिश्र काल 11,590। सबकी टोटल कितनी देखी थी हमने?
11,700।
इस प्रकार इन 12 स्वस्थान पदों के अल्पभूतव का कथन किया। अब शेष परस्थान पदों का भी इन 12 पदों में प्रविष्ट करके 42 पद संबंधी परस्थान अल्पभूतव भी जानना चाहिए, इस तथ्य का कथन करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। हमने परस्थान कैसे देखे थे? देखो स्वस्थान यानी क्या है, जैसे मान के लिए स्वस्थान क्या थे? अतीत काल में मान नो मान और मिश्र, परंतु मान में उपयुक्त हुए जीवों के परस्थान क्या है? क्रोध के 3, फिर माया के 3 और लोभ के। हर एक के स्वस्थान परस्थान में अलग अलग होगा, तो मान में तो टोटल 12 घटित हुए थे,
अभी मान में
क्रोध में
नहीं
11, 10 और 9, 12, 11, 10 और 9 याद है ना? मान में तो सभी देखो हमने 4 देखे थे, लोभ माया क्रोध मान, मान में अपने 3 और इस सब के 3-3, क्रोध के लिए मान के 2 और उसके अपना और आगे वाले के 2-3-3, 11। माया के लिए पहले वाले दो दो
दो दो
और ये दो के तीन तीन, ये छह और ये चार दस, लोभ के लिए लोभ का अपना तीन और बाकी के दो दो, नो। तो ये ऐसे 42 पद संबंधी अल्पबहुत्व करना चाहिए। 42 ख्याल में है ना, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9, एक तो 42 पद अप्पा बहुवम कायवम, आगे 42 पद संबंधी अल्पबहुत्व करना चाहिए। ये बादाल शब्द उसी से है ना, 42 से शुरुआत होती है संख्या, उस संख्या को भी बादाल कह दिया। अब 42 पदों में निबद्ध परस्थान अल्पभूतों का भी विचार कर कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। किंतु वह 42 पद विषय अल्पभूतव वर्तमान काल में विशिष्ट उपदेश का अभाव होने से सम्यक प्रकार से ज्ञात नहीं है, इसलिए उसका विशेष व्याख्यान नहीं करते। ये अपने मन से कुछ भी कह देना वो ठीक नहीं है, कहते तो व्याख्यान उसका प्राप्त नहीं। तदो छठी गाहा समत्ता भवदी, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से व्याख्यान करने पर छठी गाथा समाप्त होती है। इस प्रकार इस गाथा के व्याख्यान को समाप्त कर अब सातवीं गाथा के अवसर प्राप्त अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते। सात गाथाएं बताई थी ना हमने शुरू में, उवजोग वग्गणाह्य अविरहिदम काहि विरहियम वावी एदम्य अध्ये एको अर्थो विधीय अध्ये एको अर्थो एवं दो अर्था। कितनी उपयोग वर्गणाओं से कौन स्थान अविरहित पाया जाता है और कौन स्थान विरहित पाया जाता है, इस प्रकार गाथा के इस पूर्वार्ध में एक अर्थ निबद्ध है और गाथा के उत्तरार्ध में एक दूसरा अर्थ निबद्ध है, इस प्रकार इस गाथा में दो अर्थ निबद्ध है। इस सूत्र वचन द्वारा यह सातवीं सूत्र गाथा दो अर्थाधिकारों में निबद्ध है यह कहा गया, यानी इसमें दो अर्थाधिकार निबद्ध है। उनमें से सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध में दो प्रकार की उपयोग वर्गणाओं को अधिकृत कर, ये याद है कौन सी दो उपयोग वर्गणाएं? बहुत अच्छा, कालोपयोग और भावोपयोग। कालोपयोग में क्या लिया था? काल की अपेक्षा स्थान और भावोपयोग अपेक्षा अभाव, उसको क्या कहा था? कषाय के उदय स्थान का। तो कालोपयोग वर्गणाएं कितनी थी?
अंतर्मूर्त
और भावोपयोग में
असंख्यात लोक प्रमाण,
असंख्यात लोक प्रमाण जिसमें शर्तान के स्थान से असंख्यात। हाँ देखो देखो, तो ये तो हमने पहले के याद किया। उनमें से सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध में दो प्रकार के उपयोग वर्गणाओं के अधिकृत कर उनमें जीवों से रहित और सहित स्थान प्ररूपणा नामक प्रथम अर्थाधिकार निबद्ध है, क्योंकि उपयोग वर्गणाओं से युक्त जीवों की उपयोग वर्गणा संज्ञा करके क्या कहते हैं, जीवों को ही उपयोग वर्गणा कह दिया। उनसे रहित या सहित कौन स्थान है, इस प्रकार की पृच्छा द्वारा सूत्र का अर्थ के साथ संबंध का अवलंबन लिया गया। इसके और विशेष व्याख्यान तो आएगा, परंतु उसमें कितने जीवों से सहित है स्थान और कितने रहित है। इस गाथा में काही महिषा कहने पर कितनी उपयोग वर्गणाओं से युक्त जीव वर्गणाओं से कौन स्थान युक्त है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। मैंने उपयोग वर्गणाओं से युक्त जीव वर्गणा कह दिया, अथवा काल और भाव विषयक कितनी उपयोग वर्गणाओं के जाने के बाद जीवों से रहित स्थान होता है, क्या कहना चाहते हैं? कंटिन्यूअस में ये भी स्थान प्राप्त, वर्तमान में ये भी है ये भी है, अभी इतनी वर्गणा समाप्त होने पर वहाँ कोई जीव नहीं रहेगा, फिर आगे के वर्गणाओं में जीव पाए जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण जो कषाय के उदय स्थान है क्या सभी में एक एक जीव पाया जाएगा? वो तो असंख्यात लोक प्रमाण है। और त्रस्त जीव राशि तो यहाँ पर त्रस्त जीवन की बात की थी ना पहले उन्होंने, त्रस्त जीव राशि तो जगत प्रतर के असंख्यात विभाग प्रमाण है और वो तो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो बीच बीच में कितनी वर्गणाओं में जीव नहीं पाए जाएंगे वो बात यहाँ बताएंगे।
तो कहते हैं त्रस्त जीव की अपेक्षा ही बात चल रही
है अभी, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो काल और भाव विषयक कितनी उपयोग वर्गणाओं के जाने के बाद जीवन से रहित स्थान होता है, अथवा निरंतर स्वरूप कितनी उपयोग वर्गणाओं के द्वारा जीवन से रहित स्थान प्राप्त होता है, यानी इतनी वर्गणा में जीव है फिर नहीं है, तो नहीं है तो मिनिमम कितने में नहीं है और मैक्सिमम कितने में नहीं है। इस प्रकार पद संबंध करके सूत्र के अर्थ का समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में इस प्रकार का एक अर्थ प्रतिबद्ध है, इसका सम्यक प्रकार से निश्चय किया। गाथा के उत्तरार्ध में भी, पूर्वार्ध में तो काल और भाव की बात बताई, कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के गतियों के आश्रय से तीन प्रकार की श्रेणियों द्वारा अल्पभूत का कथन नामक दूसरा अर्थ प्रतिबद्ध है। इस प्रकार इन दो अर्थ विशेषों में निबद्ध इस गाथा सूत्र का निरूपण करके अब उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है। निर्देश ने कथन, इस न्याय का अवलंबन लेकर सर्वप्रथम पूर्वार्ध का विशेष व्याख्यान करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते। ये जो यहाँ दो बातें बताई है, तो तीन बातें बताई है, इसी का पूरा भी विवरण आएगा विशेष व्याख्यान। पुरिमध्यस्थ विहासा, अब पूर्वार्ध का विशेष व्याख्यान कहते हैं करते हैं। सर्वप्रथम गाथा सूत्र के पूर्वार्ध का विशेष व्याख्यान करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एत्थ दुव्याह उवजोग बग्गणाओ कसाय उदय ठानानि च उवजोगद्धट ठानानि च। प्रकृत में उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार की हैं, कषाय उदय स्थान और उपयोग अद्धा स्थान। काल कहो या अद्धा कहो एक ही बात, ये पहले भी इसकी बात आई थी थोड़ी। प्रकृत में पूर्वार्ध के विशेष व्याख्यान के अवसर पर उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार की होती हैं, वे कौन सी, ऐसा पूछने पर कषाय उदय स्थान और उपयोग अद्धा स्थान ऐसा कहा है। उनमें से जो क्रोधादि कषायों के उदय विकल्प प्रत्येक असंख्यात लोक प्रमाण भेदों को लिए हुए हैं, यानी प्रत्येक कषाय के जो उदय है, उदय विकल्प है ना, उदय के भेद प्रत्येक में कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण, वे सब कषाय उदय स्थान कहलाते हैं। उपयोग अद्धा स्थान ऐसा कहने पर क्रोधादि कषायों के जघन्य उपयोग काल से लेकर उत्कृष्ट उपयोग काल तक इन भेदों का संग्रह करना चाहिए, यानी जघन्य काल एक समय अधिक, एक समय अधिक, एक समय उत्कृष्ट काल तक जो सब भेद है उन सबको एक एक स्थान कहेंगे और उन सबको मिलकर यहाँ पर उपयोग अद्धा स्थान कहेंगे। ये उपयोग अद्धा स्थान अंतर्मूर्त प्रमाण है, पहले हमने देखा था इसको, यह बात आई थी एक बार, क्योंकि उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल को घटाकर जो शेष रहे उसमें एक अंक के मिला देने पर उनके भेदों की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी नंबर ऑफ भेद कितने वो पता चलता है। हमने उसके लिए 100 और 25 देखा था, 100 में से 25 माइनस किए 75 आ गए, उसमें एक मिला है 76 है, क्योंकि हमको जघन्य को भी गिनना है और उत्कृष्ट को भी गिनना है, तो इतने सारे भेद हो गए, उन सबको कहेंगे यहाँ कितने स्थान है, तो 76 है। इस प्रकार ये दोनों ही स्थान उपयोग संबंधी होने से उपयोग वर्गणाएं हैं, इन स्थानों को ही वर्गणाएं कहें, ऐसा यहाँ विवक्षित किया गया है। अब इसी अर्थ का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। एदानी दुव्याणी विठानानी उजोग वगणाओं की उच्चंती, उच्चंती हुआ है, उच्चंती चाहिए ना। उच्चंती चाहिए कि उच्चंती, उच्चंती कैसे हो, उच्चंती उच्चंती यानी कहे जाते हैं, उच्चंती करो। पीछे क्या लिखा है, उच्चंत ऊ बराबर है, डबल से चाहिए था। पीछे सूत्र है क्या अरविंद भाई, पृष्ठ 110 है ना। उच्चंती देखो 336 पृष्ठ पर लास्ट लाइन, वो जो वग्गनावती उच्चंती, तीन सौ छत्तीस पृष्ठ पर लास्ट लाइन, उच्चंती शब्द है ना, वैसे यहाँ होना चाहिए था। कहाँ लग गया, हाँ वेदानी दुवानी विठानानी योजोग वग्गणावत्ति उच्चन्ति, ये दोनों ही प्रकार के स्थान उपयोग वर्गणा इस नाम से कहे जाते हैं, यह सूत्र सुगम है। सर्वप्रथम उनमें से उपयोग अध्यास स्थानों में जीवों से रहित और सहित स्थानों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया, यानी कोई जीव जगन में, कोई उत्कृष्ट में, कोई इन बिटवीन सब है, तो क्या सभी में कुछ ना कुछ जीव है क्या नहीं है, उसकी बात कहेंगे।
क्या तो क्या ऐसे बता रहे हैं कि ऋषि सुदेश स्थान में जो काल का स्थान है वो भी फिक्स है, नहीं ऐसा नहीं है ना, काल में वेरिएशन हो सकता है,
वो तो हम देख के आए ना।
हाँ वो ही मैं पूछ रहा हूँ,
एक एक सुदेश स्थान में कालों के वेरिएशन हम देख के आए, ये पहली बात हो सकती है। अब कहते वो जो दठाने हिम ताव केतीय हिम विरहिदम के हिम कम्मी अविरहिदम, प्रश्न चिन्ह कौन क्यों, अच्छा कितने ये प्रश्न पूछ रहे, कितने उपयोग अध्यास स्थानों के जाने के बाद कौन स्थान रहित पाया जाता है और किन जीवों से किस गति विशेष में कौन स्थान सहित पाया जाता है, यह प्रश्न चिन्ह करो। पहले तो इन्होंने प्रश्न उठाया, अभी उस पर उनकी चर्चा चलेगी, बताएंगे कितने, अभी उसी प्रश्न का ही अर्थ बता रहे हैं, उसका उत्तर नहीं बता रहे, पहले में पहले प्रश्न क्या है उसको समझा रहे हैं। कितने उपयोग अध्यास स्थानों के द्वारा निरंतर रूप से जाने के बाद, यानी प्रत्येक समय प्रति समय एक एक स्थान में जीव है, तो कितने स्थान जाने के बाद कौन स्थान जीवों से रहित उपलब्ध होता है, ये एक प्रश्न। फिर किन जीवों से किस गति विशेष में कौन स्थान सहित अर्थात अशून्य उपलब्ध होता है, इस प्रकार यहाँ पर पद संबंध करना चाहिए। इस प्रकार पृच्छा निर्देश करके उसके बाद यह मार्गणा यहाँ पर करनी चाहिए, इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बताइए यानी कौन सी मार्गणाओं में एक कौन सा कथन होगा, ये बात मार्गणा विशेष से वहाँ वो स्थानों की बात आएगी। इत्थम अगणा, अब प्रकृत में उक्त विषय की मार्गणा कहते हैं। मार्गणा करना यानी अन्वेषण खोज, उनमें वो बात बताएंगे। इस अर्थ विशेष को ध्यान में रखकर, कौन सा अर्थ विशेष, ऊपर जो प्रश्न पूछा था
कौन स्थान में,
कितने उपयोग अध्यास स्थानों के जाने के बाद कौन स्थान रहित पाया जाता है और कौन किन जीवों में किस गति विशेष में कौन से स्थान सहित और रहित पाया जाता है, वहां तो सहित की बात की। अब कहते ये अर्थ विशेष ध्यान रखकर नरकादि गतियों के आश्रय से यह मार्गणा करनी चाहिए। मार्गणा करना ही उनकी खोज करना, अन्वेषण करना है, समझना उसको। उसमें सर्वप्रथम नरक गति में प्रकृत मार्गणा के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। निरयवदीय एगस्त जीवस कोहोग जोगद्धानेसु नाना जीवाणम जव मध्यम। नरक गति में एक जीव के क्रोध कषाय संबंधी उपयोग अद्धा स्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा यव मध्य होता है। पढ़ेंगे तो समझेंगे। इस चूर्णी सूत्र में नरक गति पद का निर्देश शेष गतियों के प्रतिषेध के लिए किया है, क्योंकि सभी गतियों के एक साथ प्ररूपण करने का कोई उपाय नहीं है। तो एट ए टाइम एक गति की बात करेंगे, उसमें भी चारों क्रोधादि कषायों के एक साथ प्ररूपण करने का कोई उपाय नहीं होने से क्रोध कषाय विषय प्रकृत प्ररूपणा को ही सर्वप्रथम बतलाते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए एक जीव के क्रोध संबंधी उपयोग अध्या स्थानों में इस पद का निर्देश किया है। यहाँ पर एक जीव पद का निर्देश क्रोध संबंधी उपयोग अध्या स्थानों का एक जीव के उदाहरण द्वारा सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए जानना चाहिए। एक जीव क्यों कहा, तो उसको अच्छी तरह से हम जान सकते हैं एक जीव के उदाहरण द्वारा, उसको समझ सकते अच्छी तरह से। इसलिए एक जीव के अंतर्मूर्त प्रमाण क्रोध संबंधी उपयोग अध्या स्थानों की श्रेणी रूप से रचना करके, श्रेणी यानी पंक्ति, सभी स्थानों को एक के ऊपर एक रख देंगे। उनमें नाना जीवों के अवस्थान क्रम को दिखलाने के लिए नाना जीवों का एवं मध्य यह वचन कहा है। एक जीव के विषय रूप से निर्धारित किए गए उन अध्या स्थानों में नाना जीवों का यव मध्य के आकार रूप से अवस्थान होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये एक जीव की अपेक्षा नहीं, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक हम ये 76 स्थान ऐसा लिखेंगे और उसके प्रत्येक स्थान में कितने जीव है उसकी बात करेंगे नाना जीवों की अपेक्षा, तो वहाँ यवाकार रचना होगी। हाँ, तो बीच वाले स्थानों में ज्यादा जीव होगी। अब इसी अर्थ का कुछ स्पष्टीकरण करके बतलाते हैं। यथा जघन्य उपयोग अध्या स्थान में जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं, दूसरे भी उपयोग अध्या स्थान में जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण ही होते हैं। यद्यपि इतने होते हैं तो भी जघन्य स्थान के जीवों की संख्या में आवली के असंख्यात वे भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने अधिक होते हैं, यानी असंख्यात वा भाग अधिक होते हैं। सबसे जघन्य स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव, दूसरे में भी कहेंगे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, फिर भी उसमें असंख्यात वा भाग अधिक है। पहले में जितने असंख्यात जगत श्रेणी थे उसको आवली का असंख्यात का भाग दिया, जितना एक भाग प्रमाण आया वो उसी में मिलाया उतने दूसरे स्थान में जीव है। फिर भी इस विधि से यानी असंख्यात का भाग अधिक असंख्यात का भाग अधिक, इस विधि से प्रत्येक स्थान के प्रति विशेष अधिक रूप से जीवों का प्रमाण लाते हुए भागहार प्रमाण उपयोग अध्या स्थानों के जाने पर, अश्विन में बोलो भागहार प्रमाण उपयोग अध्या स्थान क्या है?
ये अंतर्भूत प्रमाण तो अध्या स्थान है, उसको
भागहार क्या देखा अभी हमने, आवली का असंख्यात भाग। अंतर्मूर्त प्रमाण तो टोटल स्थान है, भागहार प्रमाण, भागहार अपना आवली का असंख्यात भाग चल रहे हैं ना। भागहार प्रमाण का अर्थ है कि आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान जाने पर वहाँ के उपयोग अध्या स्थानों में जो जीव प्राप्त होते हैं वे प्रथम स्थान के जीवों से दूने होते हैं।
कहते उपयोग अध्या स्थानों के जाने पर,
बराबर है, पूरी बात उपयोग अध्या स्थानों की ही चल रही है। हमने देखे थे ना जघन्य स्थान उत्कृष्ट स्थान, ये काल की बात चल रही है। तो हमने वो 25 वाला पहला नंबर वाला
25 से लेकर
और ये 76 नंबर वाला लास्ट नंबर वाला, इसका काल हमने 100 देखा था और इसका 25 देखा था। इसमें जीव कितने हैं तो इतने हैं, इसमें और थोड़े ज्यादा है, इसमें और थोड़े ज्यादा है, इसमें और थोड़े ज्यादा है, इतने स्थान जाने पर ये डबल हो गए। यानी आवली के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाने पर जीवों की संख्या 2 गुना हो गई।
चय प्रमाण
चय में तो फिक्स चय बढ़ता है
तो
और यहाँ असंख्या तो अभाग, असंख्या तो अभाग बढ़ेगा, असंख्या तो जितना हुआ उसका असंख्या तो अभाग, केवल एक अभी संख्या बढ़ती थी उसको चय कहते हैं। जितनी आई है संख्या उसको असंख्या तो अभाग, तो उतना बढ़ते 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 उतने स्थान जाने पर वहाँ के उपयोग स्थान में जो जीव प्राप्त है उनकी संख्या प्रथम स्थान से 2 गुनी है। पुनः इस द्विगुण वृद्धि स्थान के ऊपर विशेष अधिक रूप से उतने ही स्थान जाकर, यानी उसके ऊपर भी विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक स्थान जाएंगे, कितने उतने, यानी आवली के असंख्या तो बात उतने ही स्थान लिखा ना। एक दूसरा द्विगुण वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है, इतनी विशेषता है कि पिछले द्विगुण वृद्धि स्थानों के प्रक्षेपों से वर्तमान द्विगुण वृद्धि स्थानों के प्रक्षेप दूने होते हैं। इसको चय नहीं कहा, इसको प्रक्षेप कहा, प्रक्षेप यानी एडिशन, उसमें कितना अधिक है यानी अधिक का प्रमाण। क्योंकि भागार उतना ही रहा और जिसको भाग देते भाज्य राशि 2 गुना हुई, तो वहां जो हम उसमें प्रक्षेप डालने वाले वो भी 2 गुना हो जाएगा। भागार की राशि उतनी रखी, जैसे यहाँ हमने अभी यहाँ जीवों का प्रमाण है, ये तो काल का प्रमाण है, 25 जीवों का प्रमाण हम कुछ ले लेंगे। यहाँ पर मान लेते 100 जीव है, तो उसमें कुछ बढ़ते 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 जीव 200 हो गए, भागार उतना का उतना रखोगी
तो दूसरे स्थान दूसरे नंबर पे 2 गुना हो जाएगा।
हाँ, तो यहाँ पहले हमने मान लेते हैं हमने 10-10 की वृद्धि की, तो जब 200 हो जाएगी भागार उतना ही रखना है 10 का, तो 220 की वृद्धि हो जाएगी। ये बताना चाहते प्रक्षेप यानी उसमें वृद्धि का प्रमाण, वो 2 गुना हो जाएगा।
नहीं,
अभी ऐसे है ना, उसमें अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि जो 200 से 220 हो गए, फिर उसका कुछ भाग उसमें मिलाना, उसका कुछ भाग मिलाना, इस तरह से हम अभी फिक्स डिफरेंस लेके चल रहे हैं। इस विधि से अवस्थित प्रक्षेप भागहार से संबंध रखने वाली, यानी प्रक्षेप भागहार अवस्थित है, यानी उसी भागहार से भाग दे रहे, आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण गुण द्विगुण वृद्धियां जाने पर,
द्विगुण वृद्धि आवली के असंख्यात वे भाग,
यानी एक बार द्विगुण वृद्धि हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, तो वो द्विगुण वृद्धि भी आवली के असंख्यात वे भाग बार हुई, वहां पर प्राप्त हुए एक उपयोग अध्या स्थान में यव मध्य होता है। तो ये 2 गुना हुआ यहाँ से, फिर और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ 2, उससे भी 2 गुना हुआ, उससे भी 2 गुना हुआ, उससे भी 2 गुना हुआ, तो यहाँ तक जाने के बाद वो यव मध्य हो गया। ये कितने बार द्विगुण वृद्धि हुई तो आवली के असंख्या के भाग बार गए। क्योंकि उससे आगे के स्थानों में विशेष हानि के क्रम से जीवों का अवस्थान देखा जाता है। इसका अर्थ क्या है, जघन्य काल स्थान में भी जीव कम है, उत्कृष्ट में भी कम है, बीच में ज्यादा है। इतनी विशेषता है यव मध्य से पूर्व के समस्त द्विगुण वृद्धि स्थानों से आगे के द्विगुण हानि स्थान संख्यात गुणे हैं, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। यानी मान लेते हैं ऐसे द्विगुण वृद्धि के स्थान कितने हैं, तो हम कहेंगे ऐसे यहाँ पर 10 स्थान हो गए,
40-50
तो आगे के स्थान जो हानि के स्थान है वो संख्यात गुणे हैं। हम कहेंगे संख्यात गुणे दो गुणे कहेंगे तो भी 20 है कहेंगे। ये वो मध्य के नीचे द्विगुण, नीचे से हम द्विगुण वृद्धि कह रहे हैं, वो कितने बार द्विगुण वृद्धि हुई तो अवली के असंख्यात होगा। तो कहते हैं आगे के द्विगुण हानि कहेंगे भी, यव मध्य से आगे हम हानि कहेंगे, वो कितनी बार होती है, तो कहते कि वो संख्यात गुणा बार होती है। देखो यव मध्य था, अवली के असंख्यात भाग से भाग देकर जो संख्या थी वो मिलाते गए हम, असंख्यात भाग था। काल की बात पूछ रहे, काल नहीं लेना है, वहाँ एक एक समय से बढ़ते हुए स्थान लेना है। अवली के असंख्यात भाग में दुगुण होते ऐसा कहाँ का है? अच्छा, उपयोग स्थानों के जाने पर, ठीक है। तो एक बार जो दुगुणा होता है उसके लिए अवली का संख्या कम, फिर अवली का समय, फिर अवली का समय, इतने यानी द्विगुण वृद्धियां भी अवली के संख्या से भाग हो जाएगी, तब जाके वो यव मध्य होगा। और नीचे के जितने हैं स्थान उससे ऊपर के संख्यात गुण, देखो यहाँ इतनी विशेषता है कि यव मध्य से पूर्व के समस्त द्विगुण वृद्धि स्थानों से आगे के द्विगुण हानि स्थान संख्यात गुणे हैं, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि पूर्व के अध्वान से, अध्वान यानी वो लंबाई, आगे का अध्वान संख्यात गुणा है और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि आगे के सूत्र से उनके उस प्रकार से होने की सिद्धि होती है। वह आगे का सूत्र कौन सा है, ऐसी आशंका होने पर उसका ये इस समय अवतार करते हैं। समझा, स्थानानम संख्यत यदि भागे, वह यव मध्य स्थान जितने स्थान है उनके संख्यात्वे भाग में होता है। संख्यात्वे मान लेते कितना इतना काल है, हमने कितना माना है, 76 माना है स्थान, टोटल स्थानों की संख्या 76 मानी है। अब उसका चौथा भाग करो ना, संख्या का भाग है ना, यानी 1/4 नीचे ले लो, 3/4 ऊपर रखो, यह पूर्व में जो यव मध्य स्थान निर्दिष्ट कर आए हैं, वह समस्त अर्धा स्थानों के प्रारंभ से लेकर संख्यात्वे भाग जाने पर उत्पन्न होता है। समस्त अर्धा स्थान अंतर्मूर्त प्रमाण है, वो अंतर्मूर्त का संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थान जाने पर यव मध्य होगा, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसलिए समस्त स्थानों के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थान जाने पर ही यव मध्य स्थान होकर पुनः आगे के समस्त अध्वानों में विशेष हानि के क्रम से आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण गुणहानि स्थान, वहाँ द्विगुण कहा था, यहाँ मात्र गुणहानि कहा, बात एक ही है। पिछले गुणवृद्धि स्थानों से समय के अविरोध पूर्वक संख्यात गुणे होते यह सिद्ध हुआ, जैसे शास्त्र में आगम ने कहा है वैसे होता, समय के अविरोध पूर्वक। समय ने यहाँ स्व समय जिनोक्त जो सूत्र है उसके अनुसार विशेष, यहाँ पर यव मध्य स्थान के प्राप्त होने तक पूर्व में कितनी द्विगुण वृद्धियाँ होती है और उसके आगे कितनी द्विगुण हानियाँ होती है, इस प्रमाण का निर्देश करते हुए यह बतलाया गया है कि यव मध्य स्थान जहाँ अवस्थित है वहाँ तक जितनी गुण वृद्धियाँ होती है उससे आगे द्विगुण हानियाँ संख्यात गुणी होती है। ये बात ख्याल में आई यहाँ पर? अब कोई को प्रश्न फोन पर पूछे ये वो मध्य क्या होता है, भी क्या समझा लेते हैं। अब यव मध्य से पूर्व में और आगे, यव मध्य से पूर्व में और आगे एक गुण वृद्धि और एक गुणहानि स्थान आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही है इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र आया है। एक गुणवृद्धि हानि स्थानांतरम आवलीय वग्गमूलस्य असंख्य जति भागो, एक गुणवृद्धि स्थानांतर और एक गुणहानि स्थानांतर। गुणहानि को ही, गुणहानि का जो आयाम है उसको गुणहानि स्थानांतर भी कहते हैं। आवली के वर्गमूल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, आवली के नहीं, आवली के वर्गमूल के। आवली प्रमाण विशेष का नाम है, उसका वर्गमूल कहने पर उसके प्रथम वर्गमूल का ग्रहण करना चाहिए। उसके भी असंख्यात विभाग प्रमाण यो मध्य से पूर्व एक गुणहान वृद्धि स्थानांतर और उसके आगे एक गुणहानि स्थानांतर अवस्थित स्वरूप है, अर्थात एक आवली के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग का जो प्रमाण है उतना प्रकृत में एक गुणवृद्धि स्थान और एक गुणहानि स्थान का प्रमाण है। नाना गुणहानि स्थानांतर शलाकाएं तो असंख्यात आवलियों के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है।
एक आवली के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग का जो प्रमाण है उतना प्रकृत में गुणवृद्धि का स्थान और एक गुण स्थान का गुणानि स्थान का प्रमाण है। हमने देखा गुणानि गुणानि स्थान प्रमाण है वो संख्यात गुणा है, तो यहाँ
नहीं, नंबर ऑफ गुणहानियाँ संख्यात गुणा है, गुणहानि एक गुणहानि तो उतनी है, नंबर ऑफ गुणहानियाँ नीचे कितनी है ऊपर कितनी है। अभी वृद्धि छोड़ो, उसको हम यव मध्य की ओर से देखेंगे तो दोनों तरफ हानि कहो, ऊपर की ओर हानियाँ कितनी है, नीचे की ओर हानियाँ कितनी है, उसको नाना गुणहानि कहते हैं। तो नीचे की नाना गुणहानियों से ऊपर की नाना गुणियाँ संख्यात गुणा है, बस इतना ही है। तो कहते एक गुणहानि का कितना है प्रमाण, तो आवली के वर्गमूल का असंख्यात प्रभाव। और टोटल नंबर ऑफ नाना गुणहानियां कितनी है, तो असंख्यात आवलियों के प्रथम वर्गमूल प्रमाण। एक के लिए कितना आवली का प्रथम वर्गमूल, तो नाना गुणहानि की कितनी होगी, तो असंख्यात गुणा करेंगे उसको। यह इसी वचन से साथ लेना चाहिए, इसलिए उनका कथन अलग से नहीं किया है, यह सब अतीत काल का आश्रय लेकर कहा है। अब वर्तमान काल का आश्रय लेकर विशेष का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं।
यह अतीत का आश्रय करके ये इतने स्थान बताए,
यानी अतीत में प्रत्येक स्थान में कब कितने जीव थे, तो उसमें यव मध्य रचना होती है, ये बात कह रहे हैं। अब कहते हैं हेठा जव मध्यस्थ सव्वाणी गुणहानि स्थानांतराणि आउन्नानि सदा, यव मध्य के अधस्तन, अधस्तन यानी नीचे की पूर्ववर्ती यानी जघन्य से लेकर यव मध्य तक की सब गुणहानि स्थानांतर सर्वदा अपूर्ण है, अर्थात जीवन से भरे हुए हैं। सब गुणहानि स्थानांतर यानी सभी गुणहानियां, यानी नीचे की नाना गुणहानियां, यानी नीचे के सभी जो वहां पर स्थान पाए जाएंगे। हाँ, यव मध्य के पूर्ववर्ती तो सर्व गुणहानि स्थानांतर सर्वदा अंतराल के बिना जीवों से अपूर्ण ही होते हैं। ऐसे यहाँ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक भी गुणहानि स्थानांतर जीवन से रहित नहीं पाया जाता। अब वहां के सब अध्यास्थान क्या जीवन से निरंतर अपूर्ण है या नहीं, इस प्रकार की आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणहानि में तो जीव है, अपूर्ण है ने भरे हुए, क्या कहते हैं, एक गुणहानि स्थान स्थान में तो बहुत सारे स्थान है, अवली के असंख्या तो भाग प्रमाण स्थान है नहीं, प्रत्येक गुणहानि में है ही, प्रत्येक एक एक गुणहानि की अपेक्षा देखेंगे तो प्रत्येक गुणहानि में जीव है, परंतु एक एक गुणहानि के प्रत्येक स्थान में है क्या नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो कहते नहीं है। देखो आगे का सूत्र, सर्व अध्यस्थानानां पुनः असंख्येजा भागा आऊर्णा, किंतु सर्व अध्यस्थानों का असंख्यात बहुभाग ही अपूर्ण है, यानी असंख्यात का भाग खाली है। प्रत्येक गुणहानि में तो जीव हो गए, वहां के सर्व अध्यस्थानों का असंख्यात बहुभाग ही जीवों से निरंतर रूप से अपूर्ण है, उनका असंख्यात वा भाग तो जीवों से रहित पाया जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। फिर शंका, यदि ऐसा है तो सब गुणहानि स्थानांतर अपूर्ण है या पूर्वोक्त वह चाहिए, यह पूर्वोक्त कथन कैसे घटित होता है, पहले बताया ना सभी गुणस्थान जो है गुणहानि स्थानांतर वो जीवन से अपूर्ण है, अब कहते सभी अध्यस्थान तो अपूर्ण नहीं है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पृथक पृथक सब गुणहानि स्थानांतरों में से कितने ही अध्यस्थान जीवन से रहित होने पर भी समुदाय की विवक्षा में उन गुणहानि स्थानांतरों के अपूर्ण पने के होने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहना चाहते है, प्रत्येक गुणहानि में कितने स्थान है, तो कहते हैं अवली के असंख्या होगा, अब यहाँ हमने कहा अवली के वर्गमूल का असंख्या होगा, तो कहते उसके एक एक स्थान में जीव पाए जाएंगे, तो कहते नहीं, कितने स्थान रिक्त रहे, जीवों से रहित हो गए, असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान जीवों से रहित हो गए, तो कहते फिर गुणहानि प्रत्येक गुणहानि में होते, ऐसे क्यों कहा, तो गुणहानि तो पूरा समुदाय मिलकर गुणहानि कह रहे, तो उस अपेक्षा से प्रत्येक गुणहानि में जीव पाए जाएंगे, परंतु एक एक गुणहानि के प्रत्येक स्थान में जीव होगी ये बात नहीं हो सकती। इस प्रकार सर्वप्रथम यो मध्य से पूर्व के जीवों से रहित और सही स्थानों का विचार करके अब उससे उपरिम स्थानों में भी प्रकृत विषय का विचार करने के लिए आगे के प्रबंध को करते हैं, यानी यव मध्य के नीचे प्रत्येक गुणहानि में जीव है, परंतु उस गुणहानि के प्रत्येक स्थान में जीव नहीं है, वह स्थान के बदले हम वर्गणा कहेंगे, क्योंकि वर्गणा और गुणहानि ये टर्मिनोलॉजी, जैसे हमने स्वर्गक में क्या कहते देखे थे, एक एक स्वर्ग में वर्गणा होती है अनंत, परंतु कंटिन्यूएशन में थोड़ी होती है, बाकी तो बीच में स्पेस बाकी रहती है, ऐसे यहाँ एक एक गुणहानि में वर्गणाएं हैं, जो एक एक स्थान को वर्गणा कहा है उसमें कितने स्थान तो रिक्त रहेंगे, परंतु हर एक गुणहानि में असंख्यात बहुभाग स्थान तो रहेंगे, वहाँ असंख्यात वा भाग नहीं रहेगा, कहा था वो रहेगी। देखो अभी यव मध्य से नीचे की बात हो गई थी, इस प्रकार सर्वप्रथम यव मध्य से पूर्व के जीवों से रहित और सही स्थानों का विचार करके अब उससे उपरिम स्थानों में भी, उपरी मैंने यव मध्य के ऊपर स्थानों में भी प्रकृत विषय का विचार करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। यह मध्य से आगे के गुणहानि स्थानांतरों का ऊपर रह गया प्रकृत, उवरिम जव मध्यस्थ जहन्नेन गुणहानि स्थानांतराणं संख्ये यदि भागो आउन्न उक्कस्तेन सर्वाणि गुणहानि स्थानांतराणि आउन्नानि। यो मध्य से आगे के गुणहानि स्थानांतरों का जघन्य रूप से संख्यात वा भाग जीवन से अपूर्ण है, तथा उत्कृष्ट रूप से सब गुणहानि स्थानांतर जीवन से अपूर्ण है, जिस प्रकार यो मध्य से पूर्व के सब गुणहानी स्थानांतर नियम से जीवन से अपूर्ण है, उस प्रकार यो मध्य से आगे के गुणहानी स्थानों में उस प्रकार का नियम नहीं देखा जाता, किंतु उनमें जघन्य रूप से सब गुणहानी स्थानांतरों का संख्यात भाग ही जीवन द्वारा भरा जाता है, क्योंकि शेष संख्यात बहुभाग प्रमाण गुणहानी स्थानांतर कदाचित जीवन से रहित पाए जाते हैं। यानी कितने ही गुणहानियों में जीव नहीं पाए जाएंगे, संख्यात वे भाग प्रमाण में पाए जाएंगे। हाँ, अनेक गुणहानियों में जीव नहीं होंगे, परंतु क्या कहते हैं, उत्कृष्ट रूप से। परंतु ये भी बात बन सकती है कि सब गुणहानी स्थानांतर जीवों से अपूर्ण प्राप्त होते हैं। यानी कभी कभी सब प्रत्येक गुणहानी में जीव है और है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कदाचित सभी गुणहानी स्थानांतरों को व्याप्त कर नारकियों का अवस्थान देखा जाता है।
ये परंतु उत्कृष्ट रूप से सब गुणहानी स्थानांतर जीवों से अपूर्ण प्राप्त होते हैं, तो उत्कृष्ट की तरफ जो है उसमें
उत्कृष्ट की तरफ ही नहीं। जैसे हम क्या कहते हैं, अभी यहाँ तो 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं, उत्कृष्ट रूप से कितने होंगे?
60 नहीं ज्यादा, 170।
तो वो तीर्थंकर उत्कृष्ट होंगे, क्या होगा उनकी संख्या उत्कृष्ट हो। तो यहाँ कभी ऐसा हो जाएगा कि ऊपर के प्रत्येक गुणहानी में जीव है, ये उत्कृष्ट रीति से प्रत्येक में हो सकते हैं, फिर भी जघन्य रूप से कितने संख्या के भाग में तो हो गई हो। ये कभी कभी हो सकता है, एक एक स्थान में नहीं, एक एक गुणहानी में, स्थान में नहीं। जैसे नीचे में देखा था हमने प्रत्येक गुणहानी में है, वैसे ऊपर की प्रत्येक गुणहानी में हो सकता है कभी, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऊपर के सभी गुणहानियों में होगा। कभी कभी क्या होता है, संख्यात्वे गुणहानियों, संख्यात्वे भाग प्रमाण गुणहानियों में ही जीव पाए जाएंगे नारक में, सभी में नहीं पाए जाएंगे, ये बात हो सकती है। नीचे में तो नियम से होता है, पर ऊपर के सभी गुणहानियों में होगे ही ऐसा नहीं, कभी कभी उत्कृष्ट रूप से हो भी सकते हैं, ये बात ख्याल में है ना। उत्कृष्ट किसको कह रहे हैं, उत्कृष्ट ने सभी गुणहानियों को उत्कृष्ट कह दिया, सभी गुणहानियों में होना ये उत्कृष्ट बात है। यहाँ लिखा ना, उत्कृष्ट रूप से सब गुणहानी स्थानांतर जीवन से अपूर्ण होते।
से आगे के पद में क्या पड़ा, प्रकार का नियम नहीं देखा जाता है, सभी गुणानी में जीव
वही तो बता रहे हैं, संख्यात वे भाग में पाए जाते हैं।
हाँ।
नीचे के सभी में नियम से है, ऊपर के सभी में नियम से नहीं है।
हाँ।
तो कितने में है, तो संख्यात वे भाग में ही है।
हाँ।
कुछ कुछ गुणानियों में हो गए, परंतु ऐसा भी कभी हो सकता है कि सभी में है, ये तो बात बता रहे हैं ना, उसी को उत्कृष्ट का क्या कहा, किंतु उनमें जघन्य रूप से, जघन्य रूप से यानी मिनिमम हो गए तो कितने में हो गए, क्या एक दो में हो गए तो कहते संख्यात वे भाग प्रमाण गुणहानियों में पाए जाए। मिनिमम कितने गुणहानियों में हो गए तो संख्यात वे भाग प्रमाण, और मैक्सिमम कितने गुणहानियों में हो गए तो सभी गुणहानियों में,
सब गुणहानि
जघन्य रूप से लिखा है ना। जघन्य रूप से संख्यात वे गुणहानियों में जीव अपूर्ण है, और अधिक से अधिक उत्कृष्ट रूप से सभी में,
सभी में है।
जैसे हमने वो विदेश क्षेत्र का उदाहरण दिया ना, अभी मिनिमम 20 ठेकाने हैं अभी तीर्थंकर जघन्य रूप से, उत्कृष्ट रूप से 170 तो विदेश क्षेत्र, और बाकी भी जो है 5-5 भरत ऐरावत के, सब मिलकर 170 में होते हैं, ये जघन्य उत्कृष्ट। यह प्रकृत में सूत्रार्थ का तात्पर्य है, किंतु यव मध्य के पूर्व इस प्रकार का जघन्य और उत्कृष्ट रूप विभाग नहीं, वहां तो नियम है सब गुणहानि स्थानांतरों में पाए जाए, नीचे के
वृद्धि के स्थान,
क्योंकि वहाँ सर्वदा जघन्य रूप से और उत्कृष्ट रूप से भी पूर्व में कहे गए क्रम के अनुसार ही जीवों का अवस्थान का नियम देखा जाता है। उसी को जघन्य कहेंगे, उसी को उत्कृष्ट कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक गुणानि स्थानांतर में जीव है। इसलिए वहाँ जघन्य और उत्कृष्ट का भेद करके उक्त विषय का निर्देश नहीं किया है, ऐसा समझना चाहिए। अब यव मध्य से मध्य शब्द रह गया है, छपा नहीं है। यव मध्य से आगे के अध्यास्थानों में भी जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से जीवों से रहित और सहित पने की गवेषणा करने के लिए, गवेषणा कहो मार्गणा कहो एक ही बात है, खोज अन्वेषण आगे का सूत्र आया। अब कहते जहने न अद्धठानानम संख्य यदि भागो आऊन्नो, उक्कस्य न अद्धठानानम असंख्येज्या भागा आऊन्ना। जघन्य रूप से अद्धास्थानों का संख्यात्वा भाग जीवन से अपूर्ण है, तथा उत्कृष्ट रूप से अद्धास्थानों का असंख्यात बहुभाग जीवन से अपूर्ण है। पहले क्या कहा था, नीचे यवबंधे के नीचे जितने अद्धास्थान हैं, यानी सभी गुणहानियों के जितने अद्धास्थान हैं, उसमें से असंख्यात बहुभाग अपूर्ण था, असंख्यात वा भाग खाली
खाली था।
अब यहाँ कहते हैं ऊपर की बात है, यव मध्य के ऊपर जितने अद्धास्थान है टोटल, उन सभी अद्धास्थानों का जगन्य रूप से संख्यात वा भाग अपूर्ण है, और उत्कृष्ट रूप से अद्धास्थानों का असंख्यात बहुभाग जीवन से अपूर्ण है। पहले गुणहानियों की बात की, अब टोटल अद्धास्थानों की बात की। यव मध्य के नीचे के टोटल अद्धास्थान मान लेते हैं, हमने 25 वाले से लेकर हमने 100 तक के जो अलग अलग अध्यास्थान देखे हैं, तो उसमें 25 से लेकर मान लेते हैं ना, कहाँ तक ये नीचे 20 लेना है, 76 में 76 का डिफरेंस करना है ना, हाँ तो नीचे बोलो कितने लेने हैं। अच्छा
25 नीचे ऊपर 51 ले लो,
हाँ नीचे 25 ऊपर 51, तो नीचे 25 स्थान है और ऊपर 51 स्थान, तो नीचे के जो 25 स्थान में असंख्यात बहुभाग अपूर्ण है, टोटल 25 लेना। यहाँ गुणानिया कितनी तो मान लेते 2-3 है और ऊपर 6-8 है जो कुछ है, अभी उसकी नहीं चर्चा करेंगे। यानी 5 वाली एक गुणानी कहेंगे तो भी यहाँ पर 5 गुणानिया होगी और यहाँ 10 गुणानिया होगी। तो यहाँ कहते हैं कि इसमें गुणहानियों की अपेक्षा बात करेंगे तो हर एक गुणहानी अपूर्ण है, और अद्धास्थानों की अपेक्षा बात करेंगे तो असंख्यात बहुभाग अपूर्ण है। अब ऊपर गुणहानियों की बात करेंगे तो जघन्य से संख्यात गुणहानियाँ अपूर्ण है, और उत्कृष्ट रूप से सभी गुणहानियाँ अपूर्ण है। अब अद्धास्थानों की बात करेंगे, संख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्ण है, और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात बहुभाग अपूर्ण है। जब सभी गुणानियाँ अपूर्ण है कहेंगे तब कहेंगे असंख्यात बहुभाग अपूर्ण है। जघन्य रूप से तो नीचे ऊपर पढ़ा था ना, हाँ जघन्य रूप से अद्धास्थानों का संख्यात बहुभाग जीवन से अपूर्ण है, उत्कृष्ट रूप से अद्धास्थानों का असंख्यात बहुभाग जीवन से अपूर्ण है। जघन्य रूप से तो अद्धास्थानों का, ये सारे अद्धास्थान ले लिए, संख्यात्वा भाग ही जीवन से अपूर्ण होता है, क्योंकि यव मध्य से आगे के गुणहानि स्थानांतरों के संख्यात्वे भाग मात्र गुणहानि स्थानांतरों के जघन्य रूप से जीवन से अपूर्ण होने पर उनके अवयवभूत अद्धास्थानों के भी, जो कि सब अद्धास्थानों के संख्यात्वे भाग मात्र है, जीवों से परिपूर्ण होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी पहले गुणहानियों की बात की, अब उसी के अवयव रूप अद्धास्थानों की बात की। परंतु उत्कृष्ट रूप से तो विवक्षित विषय संबंधी सब अद्धास्थानों के, विवक्षित विषय ने यव मध्य के ऊपर के सभी अद्धास्थानों के असंख्यात बहुभाग स्थान जीवन से अपूर्ण होते हैं, क्योंकि सब गुणहानि स्थानांतरों के उत्कृष्ट प्रक्षेप से आपूरित होने पर भी उनके अवयवभूत अद्धा स्थानों में से स्थान करना अद्धा स्थानों में से अपने सब अद्धा स्थानों के असंख्यात वे भाग मात्र स्थानों के जीवों से रहित उपलब्ध होने में कोई विरोध नहीं, यानी उसके असंख्यात बहुभाग स्थानों में जीव पाए जाते हैं। ये बात है, जैसे हमने नीचे देखा था वैसे उत्कृष्ट रूप से ऊपर भी हो सकता है, ये बात बताना चाहते हैं। नीचे तो नियम से होता है, ऊपर से उत्कृष्ट रूप से कभी हो भी सकता है। इस प्रकार एक उपदेश के अनुसार यह मध्य से पूर्व के और आगे के गुणहानि स्थानों और अद्धा स्थानों का इतना इतना भाग जीवों से युक्त होता है और इतना भाग जीवों से रहित होता है, इसके निर्णय का कथन करके अब यह उपदेश सब आचार्यों द्वारा सम्मत होने के कारण प्रधान है, इस बात का कथन करने के लिए इस सूत्र वचन को कहते। ये जो हमने उपदेश देखा है वो कहते एसो वेसो पवाइजई, यह उपदेश प्रवाह्यमान है। हमने जो देखा अभी वो प्रवाह्यमान है, जो यह अनंतर कहा गया उपदेश है, यानी अभी जो पहले बता चुके हैं, वह प्रवाह्यमान है, प्रज्ञापित है, अविसंवाद रूप से सब आचार्य सदा उसका आदर करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। किंतु अप्रवाह्य उपदेश के अनुसार प्रकृत प्ररूपणा किस प्रकार की है, इस प्रकार की आशंका होने पर निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र अवतीर्ण हुआ है, जब हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवानी मस्तकनो सदा देत हो प्रणव।